नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष के बावजूद भारत में रसोई गैस के पर्याप्त भंडार उपलब्ध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विभिन्न कार्यालयों में कबाड़ को डिस्पोज करने के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी लाएगी सरकार। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों पर चर्चा जारी। सत्ता पक्ष ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, भाजपा ने बजट पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, प्रदेश के विभिन्न विषयों पर की सार्थक चर्चा। और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन किया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इस पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष 3 सप्ताह से अधिक समय से चल रहा है और इसने विश्वभर में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास रसोई गैस के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं।
मैं आपके माध्यम से देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है, साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में वर्षों से पड़े कबाड़ को नष्ट करने के लिए जल्द नई स्क्रैप पॉलिसी लाएगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा कर नीतिगत फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कबाड़ के निस्तारण के लिए सभी के लिए एक समान नियम बनाए जाएंगे ताकि सारा स्क्रैप डिस्पोज किया जा सके। इससे पहले मूल प्रश्न का जवाब देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्क्रैप सभी विभागों का मामला है और इसे लेकर नीति बनाई जाएगी ताकि पर्यावरण को भी नुकसान न हो। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पिछली सरकार के मुकाबले वर्तमान सरकार ने विज्ञापनों पर आधा खर्च किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में विभिन्न विभागों, निगमों व बोर्डो में 31 अक्टूबर 2025 तक विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों पर कुल 22,87,00,000 रूपये से अधिक की धनराशि खर्च की है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने 3 साल में 28 करोड़ रुपए खर्च किए थे। विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर्यटन सीजन में जहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या होगी वहां पर पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्री नैना देवी मंदिर के लिए जल्द बड़ा मास्टर प्लान तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री नैना देवी मंदिर और ज्वालामुखी मंदिर के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर न्यास कमेटी स्थानीय विधायकों को स्पेशल इनवाइटी का मेंबर बनाया जाएगा ताकि न्यास की बैठक में स्थानीय विधायक भी शामिल हो सके। विधायक बलवीर सिंह वर्मा और विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के 1,227 करोड़ रुपए केंद्र के पास लंबित हैं। उन्होंने कहा कि मिशन का ये पैसा केंद्र से जारी करवाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों पर चर्चा आज भी जारी रही। चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधायक संजय अवस्थी ने जहां सरकार की उपलब्धियों को गिनाया वहीं प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने सीमित साधनों के बावजूद आपदा से प्रभावित हर परिवार को राहत देने का काम किया और विशेष पैकेज जारी किया। विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि सरकार ने एक ऐसा बजट पेश किया जिसका आकार पिछले बजट से भी कम है। उन्होंने विधायक निधि के साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन में की गई कटौती पर भी सवाल उठाए। विधायक मोहनलाल बराकटा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में एक बेहतर बजट पेश किया है। विधायक रणधीर शर्मा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को विधायक क्षेत्र विकास निधि में कटौती के बजाय विधायकों के वेतन की अधिक धनराशि पर रोक लगाना स्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि बजट भाषण में केंद्र सरकार, पिछली भाजपा सरकार और विपक्ष की आलोचना की गई है, इससे लगता है कि मुख्यमंत्री को भाजपा फोबिया हो गया है। चर्चा में विधायक विनोद कुमार, विवेक शर्मा, डॉ जनकराज और सुरेश कुमार सहित अन्यों ने भी हिस्सा लिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े विभिन्न ज्वलंत व सार्थक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री का सरल व्यक्तित्व, दृढ़ नेतृत्व व राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। बाद में दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए मौजूदा सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिमाचल वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा बिना सोचे समझे लिए जा रहे फैसले राज्य को और अधिक वित्तीय संकट की तरफ धकेल रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से संकट में दोहराए, लेकिन फैसले मुख्यमंत्री को सोच समझ करके लेने चाहिए। एंटी टैक्स हिमाचल प्रदेश में लगा दिया बाहर की गाड़ियों पर, और अल्टीमेटली उसके रिपरकशन ये हुआ कि पंजाब में फैसला ले लिया कि हम भी हिमाचल की गाड़ियों में टैक्स लगाएं। गिड्डों के नाम से, ऑर्फन के नाम पर डीजल और पेट्रोल पर 5 रूपये का सेस लगा करके सरकार चलाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो कतई भी उचित नहीं है। तो इस तरह के विचित्र से फैसले हिमाचल प्रदेश में जो लिए जा रहे हैं वो और चिंता के विषय है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है, उस संकट से बाहर कैसे निकला जा सकता है उस पर विचार जरूर करना चाहिए और हमारा उसमें सहयोग होगा।
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वे आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के दूसरे चरण के शुभारंभ अवसर पर शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बोल रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिसम्बर 2024 के दौरान आरंभ किए गए टीबी मुक्त भारत अभियान के पहले चरण में हिमाचल ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 14 लाख से अधिक अति संवेदनशील लोगों की जांच कर 100% लक्ष्य पूरा किया गया है। शांडिल ने कहा कि 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के दूसरे चरण में प्रदेश के 5176 उच्च जोखिम वाले गांव और शहरी वार्डों को कवर किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कांगड़ा चाय का निर्यात प्रभावित हो रहा है। धर्मशाला स्थित चाय उद्योग के सीनियर मैनेजर देवेंद्र पठानिया ने कहा कि ईरान कांगड़ा चाय का सबसे बड़ा खरीदार है और युद्ध की वजह से इस पर काफी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने प्रदेश के चाय बागवानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
ईरान चाय खरीदने वाला बहुत बड़ा देश है, तो ईरान में खुद लड़ाई लगी है। ईरान के साथ साथ जो आपका समुद्री मार्ग है वो रुका हुआ, जहाज रुके हुए हैं, के जहाज रुके हुए, दूसरे रुके हुए, तो सामान तो उसी रास्ते से जाएगा, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, काफी ज्यादा पड़ेगा एक्सपोर्ट पे। अब तो यही है कि जो भी चाय निकलेगी उसमें जो हो सकेगा, हमारी तो जैसे फ्रांस भी सैंपल गए हैं, जर्मनी भी गए हैं, तो जो भी हो पाएगा कोशिश करेंगे चला जाए।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया क्षेत्र में संघर्ष के बावजूद भारत में रसोई गैस के पर्याप्त भंडार उपलब्ध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विभिन्न कार्यालयों में कबाड़ को डिस्पोज करने के लिए नई स्क्रैप पॉलिसी लाएगी सरकार। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों पर चर्चा जारी। सत्तापक्ष ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, भाजपा ने बजट पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, प्रदेश के विभिन्न विषयों पर की सार्थक चर्चा। और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा, टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।